أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. क्या वो एक शख्स जो ये इल्म रखता हो कि आपकी तरफ उनके रब की जानिब से जो उतारा गया है वो हक है, उस शख्स जैसा हो सकता है जो अंधा हो? नसीहत तो वही कबूल करता है जो अकलमंद हो। अकलमंद कौन है? अल्लज़ीना यूफूना बिअहदिल्लाह, जो लोग अल्लाह के अहदो पैमान को पूरा करते हैं और कौलो इकरार को तोड़ते नहीं, और अल्लाह ने जिन चीजों के जोड़ने का हुक्म दिया है वो इसे जोड़ते हैं, और वो अपने परवरदिगार से डरते हैं और हिसाब की सख्ती का अंदेशा रखते हैं। वल्लज़ीना सबरु इब्तिगा अवज़ ही रब्बिहिम, और वो अपने रब की रजामंदी की तलब के लिए सबर करते हैं और नमाजों को बराबर कायम रखते हैं, और जो कुछ हमने इनको दे रखा है इसे छुपे खुले खर्च करते हैं और बुराई को भी भलाई से टालते हैं। इन्हीं के लिए आकबत का घर है। कौन सा? जन्नातु अदनी यदखुलूनहा, हमेशा रहने के बागात, जहाँ वो खुद जाएंगे और इनके बाप दादाओं और बीवियों और औलादों में से जो भी नेकुकार होंगे। क्या होगा उनके साथ? इनके पास फरिश्ते हर हर दरवाजे से आएंगे और क्या कहेंगे? सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फने मौकबत दार, कहेंगे तुम पर सलामती हो। क्या ही अच्छा बदला है इस दारे आखरत का। किनको मिला? वल्लज़ीना यनकुसूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकिही, उन लोगों को नहीं, और जो अल्लाह के अहद को इसकी मजबूती के बाद तोड़ देते हैं, और जिन चीजों के जोड़ने का हुक्म अल्लाह ने दिया है इनको तोड़ते हैं और जमीन में फसाद फैलाते हैं, इनके लिए लानते हैं और इनके लिए बुरा घर है। अल्लाह जिसकी चाहता है रोजी बढ़ाता है और घटाता है, ये तो दुनिया की जिंदगी में मस्त हो गए, हालांकि दुनिया आखरत के मुकाबले में नहायत हकीर है। ये थी आयत नंबर 19 से 26। 19 to 26 इनका उनवान है दो किस्म के लोग, दो किस्म के इंजाम। एक किस्म के लोग वो होते हैं कि जिनको अल्लाह ने जो नेमत दी, अकल दी, सोच समझ दी, उसको इस्तेमाल करके अल्लाह को राजी करने लगते हैं और वो हर उस चीज को कबूल करते रहते हैं जो अल्लाह ताला ने उनके लिए रखी थी। दूसरे वो लोग होते हैं जो कौमी रिवायात और तकलीदी ख्यालात के दायरे में रहकर सोचते हैं, वो चीज़ों को देखते हैं लेकिन दलाइल की नज़र से नहीं, रिवाज की नज़र से। वक्त का रिवाज क्या, क्या चीज़ पहले चल रही थी, क्या तरीका पहले से अब था, और उसी को वो ले के फिर चलने लगते हैं। ऐसे दोनों लोगों की सोच में बड़ा गहरा फर्क है। वो लोग जो दलील, दलील मीन के जिस चीज़ को आपका दिल माने कि ये ठीक है वही दलील होती है, जो लोग दलील के साथ जीते ना अल्लाह की निगाहों में वो आंखों वाले हैं, और जो रस्मों रिवाज और लोगों की बातों को सुन के दीन बना लेते हैं वो लोग जो है वो अंधे हैं। दोनों का अल्लाह ताला ने फर्क रखा। जो अल्लाह को सिर्फ अल्लाह नहीं मानेगा बल्कि उसके हुक्मों पे ये सारे काम करेगा जिसका हुक्म इन आयात में है, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने कामयाब लोग करार दिया। एक पूरी लंबी लिस्ट है, आप चेकलिस्ट बना सकते हैं इन आयतों में। हाईलाइट कीजिएगा आयत नंबर 20 को। पहली चीज यूफून बिअहदिल्लाह, अल्लाह का अहद पूरा करना। ये कौन सा ला इलाहा इल्लल्लाह? सोचिए जरा, कहीं शक तो नहीं, कहीं शिर्क तो नहीं, कहीं किसी दूसरे की मोहब्बतों में तो नहीं खोए हुए। दूसरी चीज वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही, हर उस चीज को जोड़ते हैं जिसके जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया। इसमें रिश्तेदारियां भी आती हैं, खानदानों को जोड़ना। अल्लाह को बहुत पसंद है कि लोग इंसानों के साथ मिलकर रहे। रहमी रिश्तों को काटना अल्लाह की रहमत को काटने की बात है। फिर इसी तरह आप देखिए कौन है वो, यख्शौना रब्बहुम, अल्लाह की खशियत, सिर्फ हाईलाइट करते जाइए। फिर यखाफूना सुअल हिसाब, बुरे हिसाब से डरते हैं। बुरा हिसाब क्या होता है और अच्छा हिसाब क्या होता है? एक रिवायत का खुलासा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम अहमद की रिवायत है, कि वो शख्स जिसका हिसाब खुला और सिर्फ उस पर नजर डाल के कहा जाने दो, लेट हिम गो, ये है आसान हिसाब, और फरमाया जिससे जिरह कर ली गई वो पकड़ा गया, वो मुश्किल हिसाब है। एक लम्हे के लिए जरा सोचिए कि जो गुनाह हम करते हैं ना, अगर अल्लाह ने सिर्फ किसी एक मौके पे हमें पूछ लिया ना, बताओ ये क्यों देखी थी बुरी चीज़, वजह बताओ, क्या दलील थी तुम्हारे पास, तुम्हारी आंख इस चीज को देखती, तो आप देखिए कि पकड़े जाएंगे। उस वक्त फिर इंसान कुछ कर नहीं सकेगा। कभी कोई गुनाह करते वक्त मत सोचिए कि ये छोटा सा है, ये सोचे कि सिर्फ अगर इसी की जिरह होगी तो क्या करेंगे। आप आजमा लीजिए कि जब आप सफर करते हैं ट्रेवलिंग में, बस दफा आपके सामान में कोई बड़ी चीज नहीं होती, एक छोटा सा एरर होता है, कोई छोटी सी चीज आपके सामान से निकल आती है, वो आपको रोक लेते हैं। बस दफा आपके पेपर वर्क में सिर्फ एक छोटी सी चीज होती है जो आपके लिए रुक जाती है, दुनिया में हम इसका अंदाजा करते हैं, यानी आजकल जो लोग पेल टॉक पे सुन रहे हैं वो इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमारा रूम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कितने साल से चल रहा है, हो रहा है, लेकिन इस दफा वो हमें इतनी ट्रबल दे रहे हैं, आज फिर उन्होंने रूम हमारा खत्म कर दिया। क्यों? कोई छोटी वजह? ये पेपर ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं, ये वहां से क्यों, ये यहाँ से क्यों? मैं सोचती हूँ दुनिया वाले इतना मुश्किल हिसाब लेते हैं, तो जरा सोचिए अगर अल्लाह ने हमसे सिर्फ एक नेमत का पूछ लिया तो क्या होगा। एक रिवायत में आता है कि कल कयामत के दिन अल्लाह ताला इंसान की नेमतों को एक पलड़े पर डालेगा और दूसरे पलड़े में उसकी नेकियों को डालेगा, और सारी जिंदगी की नेकियां एक पलड़े में जब होंगी और उसके बदले में सिर्फ अभी एक नेमत पलड़े में डलेगी, तो वो एक नेमत सारी नेकियों को खा जाएगी। बाकी नेमतों का हक तो हम कहाँ अदा करेंगे? सिर्फ इस एक आंख का हक देख लीजिए, आप सोचिए सारी जिंदगी इंसान कुछ करता रहे, इसका हक नहीं दे सकता। इतना कुछ लेके फिर इंसान अल्लाह तला से बेन्यास होके जिए। वल्लज़ीन सबर उब्तिगा वजही रब्बिहिम, अल्लाह के लिए सबर करना। देखिए सबर क्या है? जन्नत को पाने की करेंसी है, मगर इसको कैश इस दुनिया में कराना है। और ये सबर कौन सा है? जो अल्लाह की रजा के लिए। सूरत यूसुफ ने हमें कितना सबर करना सिखा दिया, इंसानों के मामले में सबर करना सिखा दिया, अपनों के बारे में सबर करना सिखा दिया, रिश्तेदारों के मुकाबले में सबर करना सिखा दिया। और जो बंदा अल्लाह के लिए सबर करेगा ना, फिर अल्लाह उसको सबर भी देगा। और सबर सिर्फ किसी तकलीफ दे, बीमारी या परेशानी या दुख वाली बात पे सबर नहीं है, नेकियों पे जमाना भी सबर है, ठंडे पानी से वजू करना भी सबर है, गीबत करने को दिल चाह रहा है वो ना करना भी सबर है, उन हालात में दीन पे अमल करना जिसमें लोग नहीं कर रहे ये भी सबर है। मैं तो कहती हूँ कि सबर जन्नत की कीमत है, और ये कीमत दिए बगैर कोई जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता। हमारे पूरे दीन का खुलासा जो है वो सबर है। आप रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक कर सकते हैं अगर आपके अंदर सबर ना हो? आप अपने माल में से कुछ पैसा निकाल के अल्लाह के रास्ते में दे सकते हैं अगर सबर ना हो? आप कनात कर सकते हैं अगर सबर ना हो? आप नमाज पढ़ सकते हैं अगर सबर ना हो? हमारा तो दिल चाहता है हम बोले, हम सोएं, हम खाएं पिएं, अब नमाज में नहीं खा सकते, हम रोजा रख सकते हैं अगर सबर ना हो? पूरा दीन, आप सबर इज इक्वल टू होल रिलीजन, कंप्लीट दीन है सबर, इसी में शुक्र है, इसी में सब, शुक्र करना भी सबर है। यानी सबर के इतने मुख्तलिफ एंगल हैं कि इंसान हैरान हो जाता है कि वाकई असल चीज अगर सिर्फ एक सबर आ जाती है ना इंसान की जिंदगी में, तो वो एक अच्छा मुसलमान बन जाता है। एक अल्लाह पे राजी होना भी सबर है। बाहर चारों तरफ आपको अट्रैक्शन दिखेंगे, आओ इस कब्र पे, आओ वो फलां से दुआ मांगो, आओ फलां से बेटे ले लो, जब तक सब्र ना हो इंसान अल्लाह के पास कभी भी सलामत जा ही नहीं सकता। हर लम्हे ऐसे लोग, ऐसी चीजें हमारे लिए मौजूद है जो हमारे सब्र की दौलत को छीनने लगे, लेकिन अल्लाह कहते हैं जो सब्र करेंगे उनको जन्नतों के दरवाजों पे फरिश्ते वेलकम कहेंगे। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, तुम पे सलामती हो, वेलकम। क्यों? बिमा सल्लई तुम, तुमने नमाजें पढ़ी? नहीं। रोजे रखे? नहीं। बीमार सबर तुम, सबर का बदला है। फने मौकबदार। और इस सबर की अहमियत उस वक्त और बढ़ जाती है जब इंसान के इर्द गिर्द वाले सबर ना कर रहे हो। हम अमूमन लोगों को देख के जीते हैं, हम कहते हैं जब लोग सब कुछ कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें, सब पागल हैं जो हम भी पागल हैं, जो वो होगा उनके साथ वही हम कर लेंगे। नहीं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह के वादों पे खुश होंगे, जो दुनिया में थोड़े पे राजी होंगे, अल्लाह कल इनके थोड़े पे राजी होगा। ये जुमला नोट कर ले, आज दुनिया की थोड़ी नेमतों पे आप राजी हो जाएं जो आपके ख्याल में थोड़ी हैं, हालांकि वो थोड़ी नहीं होती, कल अल्लाह आपके थोड़े अमलों पे राजी हो जाएगा। कि ये मेरा बंदा कुछ ना पा के भी वहां इतना खुश दिखता था, ऐसे लगता था इसको सब कुछ मिल गया, लेकिन कल अल्लाह ताला आज इनके थोड़े अमलों पे राजी। और जो आज दुनिया में बड़े बड़े मुतालबे करता है ना, कल अल्लाह भी फिर उससे बड़े बड़े मुतालबे करेगा कि लाओ क्या करके आए हो, किस तरह पाया है। तो लिहाजा बात ये कि जो बंदा अल्लाह के ऊपर निगाहें लगा लेगा फिर उसकी जिंदगी में जरूर तब्दीली आएगी। और ऐसे ही लोग हैं जो इस दुनिया से ऊपर उठ के आगे जीना चाहेंगे, और इनको फिर अल्लाह ताला वो सब कुछ दे देगा जिसको पाने की ये तमन्ना करेंगे। लेकिन इसके बरक्स वो लोग जो नाफरमान थे, जो वादे तोड़ के आए, जो सारे वो काम करते थे जो नहीं करने थे, ये अल्लाह की रहमतों से दूर हैं। ये दुनिया के लिए खुश थे, दुनिया खत्म हो गई, अब इनकी खुशी खत्म हो गई। वयकूलुल्लज़ीना कफरू, और काफिर कहते हैं कि इस पर कोई निशानी या मोजज़ा क्यों नाजिल नहीं किया गया? जवाब दे दीजिए कि अल्लाह जिसे गुमराह करना चाहता है कर देता है, और जो इसकी तरफ छुके उसे रास्ता दिखा देता है। अल्लज़ीना मनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जो लोग ईमान लाए और इनके दिल अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। याद रखो अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को तसल्ली हासिल होती है। अल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाती तूबा लहुम व हुस्नु मआब, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम भी किए इनके लिए खुशहाली है और बेहतरीन ठिकाना है। ये थी आयत नंबर 27 से 29। इसका उन्वान लिखिएगा अल्लाह की याद दिल की खुराक। अल्लाह ताला ने यहाँ जिक्र की बात की है और जिक्र के साथ इत्मीनान की बात की है। जिक्र क्या होता है? किसी को याद करना, किसी का तذکرہ करना। दुनिया में इसकी बेहतरीन सूरत नमाज पढ़ना है, उससे भी बेहतर सूरत कुरान पढ़ना है। कुरान पाक में आगे पढ़ेंगे अब सूरत हिजर में अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। बेशक हमने इस जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। वहां जिक्र कुरान को कहा गया। अल्लाह ताला कहते हैं कि जिक्र के साथ दिलों को इत्मीनान है। हम में से जो लोग वाकई सारी डिस्ट्रेक्शंस के से दूर होके कुरान सुनते हैं, तो क्या वो इस इत्मीनान को पाते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि दिल पे एक औस बरसती है? क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त आप दो आलम से बेगाना हो जाते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ये वो चीज़ है, कुरान की महफिल में बैठना दुनिया के सारे गम और डिप्रेशंस का इलाज है? देखिए, मुसलमान को गम होता है ना तो वो जिक्र की तरफ आता है, और काफिर को गम होता है ना तो वो लीकर की तरफ आता है। यही फर्क है। उसको सुकून शराब में मिलता है। क्या होता है उसके साथ? सिर्फ अपने होश और हवास से गाफिल होना चाहता है, वो सोचना नहीं चाहता। अब आप सोचिए कि जब आप अल्लाह के कलाम की मजलिस में आते हैं, क्या आपको कोई गम याद रहते, कोई दुख याद रहते? ऐसे नहीं लगता कि एक नई दुनिया, ये जन्नत का एक छोटा सा टाइटल नहीं हमें लगता? ये एक जन्नत में जो जन्नतियों की कैफियत होगी वो दुनिया में कुरान पढ़ते हुए होती है, और अगर नहीं होती तो सोचना चाहिए। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये कुरान हमें बहुत सारे जराए के बाद मिला। अल्लाह ताला ने जिब्राइल के जरिए से नबी सल्लम को पहुंचाया, नबी सल्लम के जरिए से हमें मिला। आप अगर इसको बराह रास्त अपने दिल पे महसूस करना चाहें तो आप फील करेंगे कि वाकई आप भीग रहे हैं, और यही है वो चीज जो आज की डिप्रेशन ज्यादा सोसाइटी को खुशी दे सकती है। अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र। जिस रंग में भी अल्लाह को इंसान याद रखे, उसके ऊपर गौर करे, उससे मोहब्बत करे, अपना सब कुछ उसको दे दे, आप देखेंगे कि पिछली आयतों में अल्लाह के नबी को सताने की बात थी कि मक्का वाले इतना सताते थे आपको, इतनी तकलीफ देते थे, इसके बाद अल्लाह ने कहा अच्छा तुम इनकी बातों को छोड़ो, तुम कुरान पढ़ना शुरू कर दो, देखना तुम्हें सब्र मिलेगा। आज भी यकीन करें ये बात है, आप दुनिया के किसी गम के शिकार हो, कुरान ले पढ़ना शुरू कर दे। अगर आपको समझ आता है ना, यकीन करें आपको ऐसे लगेगा सफ़े पलट पलट के कि ये आपके दुख की कहानी है। कहीं आपको मूसा याद आएंगे, लोग सता रहे थे, कहीं आपको कौमे नूह याद आएगी, हजरत नूह को पत्थर मार रही है, कहीं आपको जन्नत की कुछ बातें याद आएंगी, कहीं जहन्नम की आएंगी, आपको थोड़ी देर में अपना गम ही नहीं याद रहेगा। ऐसे लगेगा जैसे आप अपनी एक दोस्त से मिल के आई हैं। और कभी आप तजुर्बा करके देखें, थोड़ा सा वक्त आपके पास हो, गाड़ी में बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, आप छोटा सा कुरान अपना निकाल के उसको उलट पुलट करें, यहाँ से पढ़ लूँ, अच्छा यहाँ से पढ़ लूँ, यहाँ से पढ़ूँ, थोड़ी देर बाद आपको ऐसे लगेगा आप अपनी किसी दोस्त से भी बातें करके आए हैं। अच्छा वो ये बातें, अरे नहीं ये नहीं, ये तो मैंने कुरान में ये बात पढ़ी थी। यानी फिर वो कैफियत होती है कि ये कुरान आपके दिल की बाहर बनता है, फिर ये कुरान वाकई आपको अपना लगता है, फिर ये आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड लगेगी, और आपको लगेगा मुझे किसी और को कुछ कहने और बताने की जरूरत नहीं, मैं इसी के साथ आऊँ। ऐसे लोगों को अल्लाह तूबा खुशखबरियां देते हैं। किसकी? जन्नत की। कौन सी जन्नत? कि जिसमें अल्लाह ताला ने इनके लिए कितनी रहमतें रखी हुई हैं। तूबा क्या है? खैर, हुस्ना, करामत, रश, जन्नत। ये जन्नत के एक दरख्त और मुकाम का भी नाम है। ये वो जगह है कि जहां जन्नतियों के लिबास बुने जाते हैं। जन्नत का एक दरख्त है, उसमें से प्योर सिल्क निकलता है। आज दुनिया में भी तो देखिए बेस्ट क्लॉदिंग क्या है? सिल्क। कौन है जिसको सिल्क नहीं पसंद होगा? हर एक पसंद करता है। ये कीड़े के मुंह का लुआब होता है जो बाद में एक धागों में बदल जाता है। जन्नत में अल्लाह ताला ने दरख्तों के अंदर से रेशम निकालना है, और वो तूबा होगा। और वो कैसा होगा? आज सोच लीजिए, आज दुनिया में इंसान कितनी कोशिश करता है, लेकिन ये सब चीजों का जब इंसान आदी हो जाए तो कौन चाहेगा कि उसको ये चीजें वहां ना मिले? सिर्फ थोड़ी सी कीमत इसकी दुनिया में देने की जरूरत है। कजालिक अरसलना काफी उम्मा, इसी तरह हमने आपको इस उम्मत में भेजा है जिससे पहले बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं। क्या आप इन्हें हमारी तरफ से जो वही आप पर उतरी है पढ़कर सुनाइए? ये अल्लाह रहमान के मुनकर हैं। आप कह दीजिए कि मेरा पालने वाला तो वही है, इसके सिवा दर हकीकत कोई भी लायक इबादत नहीं, इसी के ऊपर मेरा भरोसा है और इसी की जानिब मेरा रजू है। अगर बिलफर्ज किसी कुरान यानी आसमानी किताब के जरिए पहाड़ चला दिए जाते, या जमीन टुकड़े टुकड़े कर दी जाती, या मुर्दों से बातें करा दी जाती, फिर भी वो ईमान नहीं लाते। बात यह है कि सब काम अल्लाह के हाथ में है, तो क्या ईमान वालों को इस बात पर दिल जमे ही नहीं कि अगर अल्लाह तला चाहे तो तमाम लोगों को हिदायत दे दे, कुफार को तो इनके कुफर के बदले हमेशा ही कोई ना कोई सख्त सजा पहुंचती रहेगी, या इनके मकानों के करीब नाजिल होती रहेगी यहाँ तक के वादा इलाही आ पहुंचे। यकीनन अल्लाह तला वादा खिलाफी नहीं करता। यकीनन आपसे पहले के पैगम्बरों का मजाक उड़ाया गया, और मैंने भी काफिरों को ढील दी थी, फिर इन्हें पकड़ लिया था, बस मेरा अजाब कैसा रहा। आयत नंबर 30 से 32, इनका उन्वान है आप इनकी मुखालफत का गम ना करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये लोग सताते थे ना, तो फिर आप चाहते थे कि अल्लाह ताला कोई ऐसा मोजजा, कोई ऐसी निशानी पेश कर दे कि जिससे एक दफा ये मुतमईन हो जाए, कहा इनको छोड़ दें, जिनको कायनात में फैली हुई निशानियां नहीं दिख रही। फिर ये बड़ी बड़ी निशानियां सुन के और मान के भी नहीं आएंगे। असल बात है कि जो दलील से नहीं मानता, जो अपने दिल की बात को ना माने कि उसका दिल जिस चीज को सच्चा कहे, और वो किसी तासुब और किसी मनफी जज्बे की वजह से उसको छुटला दे, फिर वो बड़ी बड़ी निशानियों को भी देख कर यही कह देगा कि ये सच नहीं, ये ठीक नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, और इस तरह का शख्स फिर इसका कोई इलाज नहीं है। अफमन हुआ कायमुन अला कुल्ली नफ्सिम बिमा कसबत, क्या वो अल्लाह जो निगेबानी करने वाला है हर शख्स की इसके किए हुए आमाल पर, इन लोगों ने अल्लाह के शरीक ठहराए हैं, कह दीजिए जरा इनके नाम तो लो, क्या तुम अल्लाह को वो बातें बताते हो जो वो जमीन में जानता ही नहीं, या सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातें बता रहे हो। बात असल ये है कि कुफर करने वालों के लिए इनके मकर सजा दिए गए हैं और वो सही राह से रोक दिए गए हैं, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे इसको राह दिखाने वाला कोई नहीं है। इनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी असाब है और आखरत का अजाब तो बहुत सख्त है, इन्हें अल्लाह के गजब से बचाने वाला कोई नहीं। मसलुल जन्नत इल्लती वुइदल मुत्तकून, उस जन्नत की सिफत जिसका वादा परहेजगारों को दिया गया है, ये है कि इसके नीचे से नहरें बह रही हैं, इसका मेवा हमेशगी वाला है और इसका साया भी, ये है इंजाम परहेजगारों का, और काफिरों का इंजाम एकार दोजख है। आयत नंबर 33 से लेकर 35, इनका उनवान है मकर करने वालों के लिए उनके काम खूबसूरत बना दिए गए। बज़ाहर दुनिया में लोग अल्लाह के और हक के खिलाफ चालें चलते हैं और वो इस पे खुशी महसूस करते हैं, उनको लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि क्या वो ठीक है या गलत, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि जिस चीज को आज वो अपनी कामयाबी समझ के कर रहे थे, कल यही चीज उनके लिए नुकसान का जरिया बनेगी। फिर इसमें जन्नत की बात भी हुई और उसके फलों की, मेवों की भी बात हुई, तो याद रखिए कि जन्नत की कीमत तकवा है। अल्लाह की अजमत का इतना गहरा एहसास हो कि जो डर बनकर इंसान के दिल में समा जाए, यही लोग जन्नत में बसाए जाएंगे। वहां इनको कोई खौफ नहीं होगा क्योंकि दुनिया में इन्होंने अल्लाह के डर से जिंदगी गुजारी। वह इनके चारों तरफ सरसब्जो बागात होंगे क्योंकि इन्होंने दुनिया की रौनकों से आंखें मोड़ ली थीं। इसके बरक्स वो लोग जो दुनिया में मन मौजी करते रहे, ऐसे लोगों को फिर वहां अल्लाह ताला एक बुरे हिसाब से दोचार करेगा। अल्लाह ताला हमें बुरे हिसाब से महफूज रखे। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, जिन्हें हमने किताब दी है वो तो जो कुछ आप पर उतारा जाता है इससे खुश होते हैं, और दूसरे फिरके इसकी बास बातों के मुनकर हैं। आप ऐलान कर दीजिए कि मुझे तो सिर्फ यही हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं और इसके साथ शरीक ना करूं, मैं इसी की तरफ बुला रहा हूं और इसी की जानिब मेरा लौटना है। इसी तरह हमने इस कुरान को अरबी जुबान का फरमान उतारा है, अगर आपने इनकी ख्वाहिशों की पैरवी कर ली इसके बाद कि आपके पास इल्म आ चुका है, तो अल्लाह के अजाबों से आपको कोई हिमायती मिलेगा ना बचाने वाला। हमने आपसे पहले भी बहुत से रसूल भेज दिए और हमने इन सबको बीवी बच्चों वाला बनाया था, किसी रसूल से नहीं हो सकता कि कोई निशानी बगैर अल्लाह की इजाजत के ले आए। हर मुकर्रा वादे की एक लिखत है, यानी लिखा हुआ है, यमहुल्लाहुमा यशा व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब, अल्लाह ताला जो चाहे मिटा दे और जो चाहे साबित रखे, लौहे महफूज उसी के पास है। इनसे किए हुए वादों में से कोई अगर हम आपको दिखा दें या हम आपको फौत कर लें, तो आप पर तो सिर्फ पहुंचा देना है, हिसाब तो हमारे जिम्मे है। ये थी आयत नंबर 36 से 40, इनका उनवान है तकदीर के फैसले अल्लाह के हुक्म से। इन आयात में जो एक आयत 39 थी इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, यमहुल्लाहुमा यशा व युस्बितु व इंदहुमुल किताब, इसकी रोशनी में हम थोड़ी सी बात तकदीर पे कर सकते हैं। बाज़ लोग तकदीर के मसले पे बहुत उलझते हैं और बाज़ दफा अपने इस्लाम को, अपने दीन को दाव पे लगा लेते हैं गलत बातें करके, ये कह के कि अगर अल्लाह ने हमारे नसीब में ऐसा लिखा है तो फिर ऐसा क्यों होगा और वैसा क्यों होगा। तो याद रखिए, चंद जुमले बोलूंगी शायद तकदीर के मसले को समझने के लिए आपकी मदद देंगे। पहली बात यह कि तकदीर इल्मे इलाही है, हुक्मे इलाही नहीं। हुक्म नहीं दिया हुआ कि ये करो, इल्म है अल्लाह का। कैसे? आप माएं हैं, अपने बच्चों के बारे में प्रिडिक्ट कर लेती हैं कि ये बच्चा, इसका मैलान, इसका रुझान ऐसा है, ये देखना ये कल बड़ा होके बड़ा अच्छा काम करेगा। बाद में ऐसे ही होता है, वाकई बच्चा वो काम करता है। अब क्या ये आपका हुक्म था? आपने बच्चे की नेचर को देख के इसको महसूस किया। एक उस्ताद अपने शागिर्द को बहुत मेहनत करता हुआ देखकर कहता है कि देखना ये कल किसी बहुत आला मुकाम पे पहुंचेगा। कल वो पहुंच जाता है, तो वो कल कोई कहे कि तुम ऐसे कैसे पहुंचे, वो कहे नहीं, ये तो मेरे उस्ताद की वो बात थी, इस वजह से मैं ऐसा हुआ। नहीं, अगर वो मेहनत ना करता तो उस्ताद की वो बात उसके हक में ना आती। इसी तरह अगर किसी शरीर बच्चे को या गलत कर हरकतें करते स्टूडेंट को गलत काम करते देख, अगर एक उस्ताद ये कह दे कि भाई देखो तुम कल बिगड़ जाओगे, तुम बहुत खराब होगे और तुम किसी मुश्किल में फंस जाओगे, और साथ ही ये बातें लिख के उसको एक पेपर पे दे दे, कहे कि ये पर्चा रख लो और कभी किसी मुश्किल में फंसोगे तो इसको खोल के पढ़ लेना, और वाकई ऐसा हो, उसकी तवज्जो खराब हो, उसकी कंपनी खराब हो, वो गलत गैंग को कर ले और इस तरह एक दिन जेल में पहुंच जाए। जब जेल में पहुंच जाए तो उसको अपने उस्ताद की बात याद है कि इसी मुश्किल में पड़ोगे तो वो पर्चा खोल के देखना, जब वो खोले तो उसमें यही लिखा हो कि ये बच्चा बड़ा हो के बहुत गलत काम करेगा और एक दिन जेल में पहुंच जाएगा। वो फौरन जेलर को बुलाए, कह के देखो मुझे जेल में ना डालो, उस मेरे उस्ताद को डाल दो। क्यों? कि देखो उसने ये इतने साल पहले लिख दिया था। कोई मानेगा? अल्लाह ने हमें हुक्म नहीं दिया कि ये करो, उसने हमारे मेलाना हमारे दिल के रोजान को जान के पहले ही लिख लिया तुम ये करोगे। आज हम इस वक्त यहाँ कुरान के लिए मौजूद हैं। हमारा इरादा तो था कल भी कि हम आएंगे, हमने शुरू से नियत की हुई है कि हम हर रोज आएंगे, लेकिन हमें यकीन नहीं था कि हम आज आ सकेंगे। अल्लाह को दुनिया बनाने से भी 50,000 साल पहले पता था कि आज की इस तारीख, आज का ये दिन, इस वक्त हम यहाँ ये कुरान करेंगे। हमें खुद 2 माह पहले नहीं पता था, शायद इससे भी कम अरसा, कि हम इस क्लासरूम में ये दौरे कुरान कराएंगे। नहीं पता था ना? अल्लाह को उस वक्त भी पता था जब हम कहीं और प्लान कर रहे थे, और आज हम कल के लिए जो प्लान कर रहे हैं हमें फिर नहीं पता क्या हो रहा है। अल्लाह ने जो कराना है उसको आज भी पता है। तो लिहाजा अल्लाह ने किसी को फोर्स नहीं किया। फोर्स तब होता जब फरिश्ते जबरदस्ती वो काम कराते, हर बच्चे के साथ एक बुकलेट आ जाता, उसमें डे टू डे उसकी डायरी लिखी होती, इस दिन इसने ये करना है, और आप वो डायरी देख के परेशान है कि देखो अगर मैंने इस वक्त ये फिल्म ना देखी तो ये अल्लाह का लिखा हुआ गलत हो जाएगा। भाई आप अपनी मर्जी से मूवी देखते हैं? कभी किसी ने इसलिए मूवी देखी कि क्या करूं, अब मेरी किस्मत में लिखा हुआ, अगर मैं ना ये मूवी देखूंगा तो लिखा हुआ झूठ हो जाएगा? नहीं, आपका अपना दिल चाहता है, आप उठते हैं, आप कहते हैं फन है, चलो बोर हो रहे हैं, मूवी देखते हैं। तो कैसे हो सकता है कि अल्लाह का लिखा हुआ आपके ऊपर कोई जुल्म हो? काफी ज्यादा इसको हमने डिफरेंट एंगल से देखा था, एक लेक्चर भी है तकदीर की हकीकत, तो इंशाल्लाह कभी आप उससे भी फायदा उठाएं कि जिसमें बहुत लॉजिकल वे में तकदीर की बात की गई है। तो बात यह है कि हम किसी चोर दरवाजे से बच नहीं सकते, मानने में ही बात है। अगर हम चाहते हैं कि गुनाहों पे हमें ना पकड़ा जाए क्योंकि अल्लाह के हुक्म से किए, तो फिर नेकियों पर क्यों उम्मीद रखते हैं सवाब की? वो भी अल्लाह का हुक्म था। अल्लाह ताला हमें सीधी समझ दे। अवलम यरौन्ना तिलर्द नन कुसुहा मिन अतराफिहा, क्या वो नहीं देखते कि हम जमीन को इसके किनारों से घिटाते चले आ रहे हैं? अल्लाह हुक्म करता है और कोई इसके काम पीछे डालने वाला नहीं, वो बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। इनसे पहले लोगों ने भी अपनी मक्कारी में कमी न की, लेकिन तमाम तदबीरें अल्लाह ही की हैं। जो शख्स जो कुछ कर रहा है वो अल्लाह के इल्म में है। काफिरों को भी मालूम हो जाएगा किस जहां की सजा किसके लिए है। वयकूलुल्लज़ीन कफरू लस्त मुरसला, ये काफिर कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं। आप जवाब दीजिए कि मुझ में और तुम में अल्लाह ही गवाही देने वाला काफी है और वो जिसके पास किताब का इल्म है। ये थी आयत नंबर 41 से 43, 41 से 43। इन आयत का उन्वान है हक की दावत को झुठलाने की कोशिशें, लेकिन कामयाब नहीं हुए। अल्लाह के नबी के दौर से लेके आज तक के दौर में लोगों ने हमेशा हक के रास्ते में रुकावटें खड़ी की, लेकिन कामयाब ना हुए। वो रुकावटें डालने वाले आज नहीं हैं, लेकिन अल्लाह का दीन आज भी मौजूद है और रहती दुनिया तक रहेगा। अगर ये बात आज के दौर के मुखालिफिन को बता दी जाए तो हो सकता है कि वो अपना वक्त जाया करने से बच जाए। कुरैश मक्का बहुत खुश थे कि उन्होंने अल्लाह के नबी को मक्का से निकाल कर अपने लिए एक बड़ी खैर का फैसला किया। अब ये हमेशा के लिए मसला दब गया, कि वो ये नहीं समझ सके कि अल्लाह का नबी अगर मक्का से निकाल दिया गया तो मदीना में उनका इस्तकबाल करने के लिए लोग मौजूद हैं। और बात भी यही है कि किसी शख्स की यानी अल्लाह के लिए बेलौस अल्लाह के दीन की खिदमत करना, ये इतना बड़ा हथियार है कि जिसको इस्तेमाल करके इंसान हर जगह अल्लाह के दीन का काम कर सकता है। देखिये सच्ची नीयत से अल्लाह के दीन की तबलीग आज भी ये वो वेपन है कि जिसके आगे दुनिया के मादी बड़े बड़े वेपन जो है वो बेकार हो जाते हैं। सिर्फ बात क्या है कि जो अल्लाह की तरफ बुलाने वाला हो वो पूरे यकीन और कन्विक्शन के साथ उस पैगाम को फैलाए। सहाबा कराम ने इसका बेहतरीन सबूत दिया। अल्लाह के नबी मदीना में सिर्फ 10 साल रह सके, आपके बाद आपके मिशन को आपके सहाबा कराम ने पूरा किया। आज के दौर में भी ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो बुराइयों का शिकवा करने की बजाय और सिर्फ तनकीद करने की बजाय इसी सोच को सामने रखते हुए अपने आप को नफामंद बना सके। पूरी सूरत रात जो है उसका थीम भी यही था। आपने शायद नोट किया कि नहीं, लेकिन मैंने पढ़ते हुए बहुत नोट किया कि इसमें जन्नत का बहुत जिक्र था। और कैसा जिक्र? कहीं जन्नत अदन, कहीं तूबा, कहीं उनके लिए अच्छे कपड़ों की बातें, और साथ ही साथ हक और बातिल की कश्मकश। जो हमने बीच में आयतें देखी थी, वम्मा मा यन्फउ नास वाली, तो पूरी सूरत रात का यही खुलासा है। ये दुनिया उसी चीज को जगह देगी जो लोगों को नफा देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही किया, इसीलिए आज देखिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करने वाले हैं। ठीक है, क्रिश्चियनिटी के जो फॉलोअर्स हैं, नंबर्स ऑफ फॉलोअर्स ज्यादा है, लेकिन प्रैक्टिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे पे अमल करने वाले, आपकी तरह जिंदगी गुजारने वाले लोग जो हैं वो दुनिया में ज्यादा हैं। हम अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे कि पूरी सूरत में अगर हमसे कोई गलती हो गई तो उसको माफ़ फरमा दे और सही बात के ऊपर अमल करने वाला बना दे। एक और बड़ी खूबसूरत सूरत हमारी मंतजर है, दुआ करें कि हम इस वक्त में इसका हक अदा कर सकें। नाम इतना प्यारा है तो सूरत प्यारी क्यों ना होगी, और ये है सूरत इब्राहिम। पता नहीं आपके दिल में क्या उठता है लफ्ज इब्राहिम को सुन के, लेकिन मेरा तो दिल खिलने लगता है जहां लफ्ज इब्राहिम सुनती हूँ। बस मेरा तो दिल चाहता है अल्लाह बस एक दफा जन्नत में पहुंचा दे, इब्राहिम से बड़ी बातें करनी है। अल्लाह का इतना प्यारा नबी जिसने सारी जिंदगी अल्लाह के लिए अपनी दे दी, हनीफ बन गया, अल्लाह हमें भी उनके नक्शे कदम पे चलने वाला बना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा। किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख्रिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम रा, ये आलीशान किताब हमने आपकी तरफ उतारी है कि आप लोगों को अंधेरों से उजाले की तरफ लाएं, इनके परवरदिगार के हुक्म से जबरदस्त और तारीफों वाले अल्लाह की तरफ, जिस अल्लाह का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है, और काफिरों के लिए तो सख्त अजाब की खराबी है, जो आखरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को पसंद रखते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं और इसमें टेढ़पन पैदा करना चाहते हैं, यही लोग परले दर्जे की गुमराही पर हैं। ये आयत नंबर 1 से 3। इसका उन्वान क्या है? ये अंधेरों से रोशनी का सफर है। पहली ही आयत को हाईलाइट कर लें। मैं सोचती हूँ कि कुराने पाक का असल मुद्दा और मकसद क्या है, इसको बयान करने के लिए अगर हम कोई और आयत ना पढ़ें और सिर्फ इस एक आयत को समझ जाएं तो हम कुराने पाक के साथ इंसाफ कर सकते हैं। क्या? के लिए तुहरी जन ना समे नजुलुमात इलन्नूर। ये है नजूले कुरान का असल मकसद, के लोगों को अंधेरों से रोशनियों की तरफ बुलाया जाए। इसके बरक्स आज कुरान के साथ क्या है? इसकी आयतों के वजीफे, इसके जरिए जिन्नों भूतों को भगाना, इसकी आयतें घोल घोल के पानी पे पिलाना, घोल के उसके तावीज देना, बेटियों की शादी पे इस कुराने पाक को सर पे रख के उसके साए में रुखसत करना, कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए तो इसको कसम खाने के लिए बुनियाद बना लेना, इनमें से कोई मकसद कुरान के नजूल का हक अदा नहीं करता। असल ये है कि लितुख्रिजन नास मिन अज़ुलुमात इलन्नूर। हम सब इस रूम में बैठे हुए, अगर ये सब पर्दों को बंद करके ये लाइटें बंद कर दी जाएं तो क्या हम यहाँ किसी को देख सकते हैं? बहुत कम देख सकेंगे ना। इसी तरह इंसान इस दुनिया की हकीकत को सही देख ही नहीं पाता जब तक कुरान की टॉर्च उसके हाथ में नहीं आती। कुराने पाक एक टॉर्च है, जिस जिस पहलू पे इससे रोशनी डालते जाएं आपको वो पहलू खुल के दिखेगा। लोग कहते हैं कुरान पढ़ने वाले बैकवर्ड हो जाते हैं, पेसिमिस्ट हो जाते हैं। कुरान कहता है ये लोग रोशन मिजाज बन जाते हैं, रोशन ख्याल बनना है, ऑप्टिमिस्टिक बनना है। अगर तुमने दुनिया में खुली सोच वाला बनना है तो इस कुरान को समझो, और जब ये कुरान इंसान के हाथ में आता है ना तो सबसे पहले रोशनी तो अंदर होती है, ईमान आने लगता है। और ईमान क्या है? कि दिल की दुनिया को मुनव्वर करना, अंदर टॉर्च जलने लगते हैं। शुरू में वो छोटा सा एक टॉर्च होता है, बिल्कुल जैसे नाइट बल्ब, ब्लिंकी ब्लिंकी, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो 40 वॉट का बल्ब, फिर 60 का बल्ब, और होते होते पूरा दिल रोशन हो जाता है। फिर उसका दिल धड़कता है तो अल्लाह की मोहब्बत में धड़कता है, फिर उसको आखिरत अपनी आंखों के सामने दिखती है, फिर वो रब को पा लेता है, फिर वो कुरान के लफ्ज सिर्फ उसके लिए लफ्ज नहीं रहते, वो उसके लिए अल्लाह का एक पैगाम बन जाता है, वो मुस्कुराता है, वो चुपके से बातें करता है। और ये सब कब होता है? जब बंदे के अंदर इसकी तड़प होती है। फिर ऐसे बंदे को अल्लाह ताला हिदायत की तरफ माइल करता है, इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। इतना खूबसूरत लफ्ज है ये, गालिब तारीफ किए गए रब की तरफ फिर रास्ते मिलते हैं, फिर वो बंदा भी दुनिया में काबिले तारीफ होने लगता है। ऐसा शख्स फिर अल्लाह की किताब से रहनुमाई पाता है, उसको कभी कुछ इस किताब के बदले में नहीं चाहिए होता, सिर्फ एक चीज चाहिए होती है कि अल्लाह तेरे कलाम के नूर के साथ से दुनिया मुनव्वर हो जाए। आज हम कितने शिकवे कर लें, दुनिया इधर जा रही, ख्वाहिशों के अंधेरे, तमन्नाओं के अंधेरे, इन सब अंधेरों का तस्करा करने की बजाय जरूरत है इस बात की कि एक एक चिराग जलाते जाए। अब कितना भी अंधेरों से लड़े, हाय अंधेरा, हाय अंधेरा, हाय अंधेरा, नतीजा क्या? फिर अंधेरा ही रहेगा, बल्कि उसमें आपकी आवाज और बुरी लगेगी। एक काम कर दे हर एक, एक एक चिराग चला दे। और यही है वो थीम जो सूरह तौबा में भी अल्लाह ने हमें दिया था, हम में से हर एक देखे कि हम कुरान के इस नूर को फैलाने में क्या काम कर सकते हैं। हमारे घर नहीं है भी रोशन, तो अपने घरों में ये चिराग जलाना है। पहले तो दिलों में चिराग जलाना है, फिर अपने हाथों को रोशन करना है, अपनी आंखों को, अपने चेहरों को करना है। यकीन करें कि जब दिल में ये नूर आता है ना, तो उसके बाद आपका चेहरा भी नूरानी होने लगता है। फिर आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, आपके चेहरे पर अल्लाह एक ऐसी चमक दे देते हैं जो आपके अंदर के इत्मीनान को जाहिर करती है। फिर आपका घर आप चेक करते हैं, क्या क्या गंदगी है, कहाँ कहाँ अंधेरे हैं, इसको निकालो, मुझे अपने घर को कुरान के मुताबिक करना है। फिर इंसान अपने मोहल्ले को, अपने लोगों को, और इस तरह एक वक्त आता है कि ऐसा इंसान दुनिया के लिए एक नफामंद चीज बन जाता है। कोई प्यारी सी नीयत कर लें, इस माशरे के, इस दुनिया के अंधेरों को दूर करने में मैं क्या कर सकती हूँ। हो सकता है कोई 10 वॉट का बल्ब जला सके और कोई माशाल्लाह 100 वॉट का जला सके। अल्लाह ने हमें जो रिसोर्सेज दिए हैं ना, ये मुख्तलिफ तरह के हैं, तो अल्लाह ताला कल हमसे ये नहीं पूछेगा हमने क्या किया, हाँ ये देखेगा क्या कर सकते थे और नहीं किया। कोई नियत करें कि हमने अल्लाह के इस कलाम के नूर को फैलाने के लिए क्या हिस्सा अपना डालना है। और अगर खुद महरूम है तो सबसे पहले तो इंसान को खुद ही उसकी जरूरत होती है। खुद पा चुके हैं तो अपने इर्द गिर्द वालों के लिए दुआ करें, मांगे। मोमिन का एक एक घर, एक एक ईमान वाले का घर जो है वो नूर की ऐसी कंदीलें बन जाती हैं कि जहां वाकई फिर लोगों को रास्ता मिलता है। मुझे ऐसे लगता है इंसानियत तड़प रही है। मैं जब तसव्वुर करती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है बिल्कुल डार्क अंधेरा है, अंधेरे में लोग फिर रहे हैं और किसी को रास्ता नहीं सुझाई दे रहा। और इतने में दूर से एक शख्स एक कैंडल लेके आ जाता है और उसको कहते हैं चाहो मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम रास्ता करो। देखिए आपको जाना पड़ता है, जो अंधेरे में वो तो रास्ता ही नहीं पा रहा आपकी तरफ। आप कहते हैं क्या करें, लोगों को बुलाते हैं लोग आते नहीं, लोग बड़े जाहिल हैं ऐसे, उनको शौक नहीं। नहीं, आप चाहिए, आप कहते हैं कुआं प्यासे के पास नहीं, प्यासा कुएं के पास आता है, ये कितनी मारूफ बात है। तो मैं कहती हूँ कि आप कुआं क्यों बनते हैं, आप बादल बनिए, बादल तो बरसता है, वो तो खुद चल के आपके घर पे आता है। अगर हम इस चीज की तड़प कर लेना, यहाँ बैठे और सुनने वाले सब लोग, सिर्फ 10 10 लोगों तक मैंने इस कुरान की रोशनी को पहुंचाना है। मैंने हर मुमकिन कोशिश करनी है कि मेरी हर नेमत, हर चीज इस रास्ते में इस्तेमाल हो जाए, तो मैं समझूंगी ये फायदे का सौदा है। तो इंशाल्लाह ताला फिर हमने कुरान पाक के इस मकसद को पा लिया, और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।